सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
हम लोग चतुर्थ अध्याय देख रहे थे. तो चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान तो है मैंने किसको दिया, सूर्य को दिया, विवस्वान को दिया. फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया. देखो पहले श्लोक में गुरु परंपरा बता दी किसको किसको दिया. ये इक्ष्वाकु वंश कौन सा है मालूम है आपको? सूर्य वंश. ये आपने ख्याल किया ये सूर्य से शुरू हुआ था. विवस्वान मतलब सूर्य. भगवान कहते हैं सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया अपने पुत्र, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया. मगर ये जो है ऐसे चलता रहा कुछ दिन तक, उसके बाद में जो है वो खत्म हो गया, वो ज्ञान नष्ट हो गया. सहकाले ने है महता योगो नष्ट परंतप. परंतप अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने दिया था सूर्य को, जो तुमको अभी दिया मैंने अभी कर्मयोग चैप्टर 3 में, वही ज्ञान सबसे पहले उनको दिया था और विद टाइम लैप्स से वो जो है खत्म हो गया. खत्म हो गया वही ज्ञान. सह एवायम मयाते यद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि में सखा चेती रहस्यम विदु उत्तमम. वही ज्ञान सेम आज मैंने तुमको दिया. जैसे ही उसने कहा तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है, तो अर्जुन ने भी प्रश्न कर दिया ऑन आवर बिहाफ. अर्जुन को पता था भगवान कौन है, पर हम लोग को प्रश्न आ जाता है ना, अर्जुन के सामने भगवान कह खड़े हैं और बोलते हैं हमने सूर्य को दिया, उसकी उम्र देख के तो नहीं लगता है. तो अर्जुन ने पूछ लिया अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, पहले जन्म तो सूर्य का हुआ, आपका जन्म तो आपकी हमारी उम्र तो एक बराबर है, आपने कैसे ज्ञान दिया. कथम एतद बीजानीयाम तम आदो प्रोक्तवान, इति कैसे पता लगेगा कि आपने दिया है ये ज्ञान. तो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवचार्जुन तानी अहम वेद सर्वानी न तम वेद परंत. हम लोग के बहुत जन्म आगे हो चुके हैं, तुम्हारे भी हुए हैं मेरे भी हुए हैं, मगर मैं सारे जन्मों को जानता हूँ. मेरे जितने जन्म हुए हैं मैं जानता हूँ. अर्जुन तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, मगर तुम भी तुमको याद नहीं है अपने जन्म का. किसी जीव को याद नहीं है, दूसरे जन्म की बात छोड़ो, हमको 2 महीने पहले की क्या हुआ नहीं याद रहता है. भगवान कहते हैं हमको सब याद है. भगवान को केवल उनके जीवन का नहीं पता है, सब जीवों के जीवन के बारे में मालूम है उनको, सब के बारे में मालूम. भगवान कहते हैं अर्जुन का प्रश्न था कि आप कैसे आए, कैसे आपने किया. उसके प्रश्न के पीछे रहस्य ये है कि वो जानना चाहता है कि आपका कब कब अवतार हुआ, कैसे आप अवतार लेते हो इसके बारे में बताओ. प्रश्न इतना सीधा नहीं था अर्जुन का कि आपका जन्म हमारा जन्म मोटा मोटी एक टाइम में हुआ है, फिर आप कैसे हुआ, मेरे को अवतार के बारे में बताओ, उस टाइम आप कैसे आए थे. तो अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, मैं अज मेरा जन्म नहीं होता है, ब्रह्मन का जन्म नहीं होता है. अजोपि सन अव्यय आत्मा, अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना, अव्यय मतलब जिसमें खर्च नहीं होता है, कोई उसमें बदलाव नहीं होता है। भूता नाम ईश्वरोपि सन, और मैं सब भूतों का ईश्वर हूं, सब भूतों का ईश्वर हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया, और वो प्रकृति को अपने बस में करके शरीर किससे मिलता है, प्रकृति से मिलता है, माया से मिलता है, तो माया को अपने बस में करके मैं अपना एक शरीर ले लेता हूं। फर्क क्या है, हम माया के अधीन है और वो मायापति है, ये फर्क है। प्रकृति उसके कहने पर चलती है और हम प्रकृति के कहने पर चलते हैं, इतना फर्क है। अच्छा, कब ले तो भगवान बताते हैं, हम कब लेते हैं जन्म, भी बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म के अंदर डिक्लाइन होता है, ह्रास होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनश्चिरं, और अधर्म बढ़ता है, तो जैसे ही धर्म घटता है तो नेचुरली अधर्म बढ़ जाएगा। तब क्या करते हैं, तदात्मनम से जा, तब मैं एक शरीर लेता हूं। कैसे लेते हैं, क्या पर्पज है, परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं को प्रोटेक्ट करता हूं, उनका रक्षण करता हूं। क्यों साधु का रक्षण करते हो, क्यों साधु का रक्षण करते हैं भगवान, क्योंकि धर्म साधु के पास रहता है। धर्म एक पताका नहीं है कि ले जाके फ्लैग लगा दिया ये हिंदू धर्म, ऐसा नहीं है। धर्म कहाँ है, धर्म हमारे हृदय के अंदर है, साधुओं के पास में है, तो साधु की रक्षा करते हैं। और क्या करते हैं, बिना सहायच दुष्कृतम, जो अधर्मी है उनका क्या करते हैं, विनाश। विनाश का मतलब साफ साफ पढ़ते, हमने आपको पता है कि भगवान पहले जाके थोड़ा समझाते हैं, समझाते हैं कि भाई समझ जाओ, नहीं समझोगे तो फिर हम उठा लेंगे आपको, तो ऐसे ही कर लेते, उठा लेते हैं फिर। धर्म संस्थापनार्थ है, किस लिए करते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए। तो धर्म की संस्थापना का काम भगवान का है, संस्थापना करना। अधर्म कहां रहता है, दुष्कृतों में, जो असाधु हैं उनके पास अधर्म है, साधु हैं उनके पास में धर्म है। अधर्म का बढ़ना मतलब असाधु लोग का बढ़ जाना, और धर्म का घटना मतलब साधु कम हो गए। तो भगवान उसको आके बैलेंस ठीक करते हैं, असाधुओं को मार देते हैं। संभवामी युगे युगे, बोले मैं हर युग में आता हूं। अच्छा, युगे युगे का मतलब ये नहीं है कि अब इस युग में आए कलयुग में तो फिर अब द्वापर में आएंगे, ऐसा नहीं है। युगे युगे का मतलब हुआ है कि जब भी दरकार होगी, 2019 में दरकार हुई, फिर 2020 में फिर दरकार हो गई, तो ही विल कम अगेन, फिर आएंगे वो, जब जब दरकार होगी तब तक वो आएंगे। फिर भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, दिव्य हैं। जन्म दिव्य कैसे है, जन्म इस वास्ते दिव्य है, जैसे हमारा शरीर पंच महाभूत का बना है, भगवान का शरीर पंच महाभूत का नहीं है। हमारे शरीर को जब क्रिमेट करते हैं तो थोड़ी सी राख मिलती है, मगर भगवान के शरीर की कभी राख नहीं मिलती। भगवान राम चले गए कुछ पता नहीं लगा, कोई राख नहीं मिली। भगवान कृष्ण चले गए, कुछ मिला, कहीं उनकी समाधि है कहीं पर, नहीं, कुछ नहीं मिलता, दिव्य शरीर है। कर्म, कर्म भी दिव्य है, कैसे कर्म दिव्य करते हैं वो आएगा भी, भगवान के कर्म भी सब दिव्य हैं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जो इसको जानता है, और हम जैसे कर्म करते हैं, भगवान जैसे कर्म करते हैं, वैसे अगर इंसान भी करना शुरू कर दे तो क्या होगा, तत्त्वतः देह पुनर्जन्म नयेति मामेति सो अर्जुन। तब वो आदमी जब देह छोड़ता है, तत्त्वतः देह, तो क्या होता है फिर, न पुनर्जन्म, फिर रीबर्थ नहीं होता है, रीबर्थ नहीं होता है। कहां जाता है, मामेति, मेरे पास आ जाता है वो, मामेति मेरे पास पहुंच जाता है। तो आपके पास पहुंचने का तरीका क्या है, कुछ थोड़ा सा हिंट दो। तो बोलते हैं बीत राग भय क्रोधा मन मया माम पासिकता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। बहुत से लोग आए मेरे पास में, बहवो ज्ञान तपसा, जिन्होंने ये तपस किया है, क्या है भाई उनकी क्वालिफिकेशन है? तो बीत राग भय क्रोध, बीत राग मतलब उनमें राग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, भय नहीं है, उनमें क्रोध नहीं है। बीत राग भय क्रोध मन मया, उनका मन कहाँ है? मेरे में है, भगवान में है। हमारा मन कहाँ है? भगवान को छोड़ के बाकी चीजों में है। उनका मन मन मया माम उपासिता, उनको कुछ भी चाहिए मेरे पास आते हैं। हम लोग क्या करते हैं?
भीख मांगते हैं भगवान के पास,
नहीं जाते हैं। अब गणेश जी से नहीं हुआ काम तो बोलते हैं तुम्हारे बाप के पास जाते हैं, हम शिव जी के पास जाएंगे। माँ पूछ रहे वो जो हैं, वो भक्त उनके जो हैं केवल एक के पास, और किसी शरण में नहीं जाएंगे। वो जो भी हो जाए एक को पकड़ के रखेंगे। माँ उपासिता बहो ज्ञान तपसा पूता मदभावागता। तो ऐसी अगर बात है भगवान, तो सब लोग आपके पास क्यों नहीं आते हैं? प्रश्न उठ जाता ना। आप किसी किसी को फेवर करते हो, जिसने आपको मन दे दिया उसको आप फेवर करते हो, बाकी सब उनको क्या करते हो? ये यथा माम प्रवर्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसी मेरी पूजा करता है हम वही कर देते हैं। आप आए हो मेरे को, हमारी शादी हो जानी चाहिए। तब वो नित्या जाए भगवान के पास में। नित्या को क्या चाहिए? आई शुड गेट ए गुड कंपेनियन भगवान। तो भगवान क्या बोलेंगे? तू मेरे पास आ जा। नो सी विल गेट ए गुड कंपेनियन। ये यथा माम प्रवर्तन थे ताम तथा भजाम। जो जैसे मांगने आता हूं दे देता हूं। कोई कहता है भाई मेरी तबीयत खराब है, तबीयत ठीक कर दो, अच्छा ठीक कर देते हैं। किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, जो मांगता है बोले मैं तो उनकी जैसे जो मांगता दे देता हूं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ, मगर सारे मनुष्य मेरी तरफ आ रहे हैं। कैसे सिद्ध करेंगे सारे लोग भगवान की तरफ आ रहे हैं? एक भी एक्सेप्शन नहीं है। भगवान कहते सब मेरी तरफ आ रहे हैं। क्यों कैसे होता है सब बताया आप लोग, बताओ आप लोग। सब आदमी सुख खोजते हैं और सुख का सोर्स मैं हूं, तो कहां जा रहे हैं सब लोग? मेरे पास आ रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसह, सारे के सारे लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा, कांक्षत कर्म नाम सिद्धि यजंत ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये जो जीवन है ना आपका, ये कर्म प्रधान है, इसमें आपको शास्त्र का अधिकार है। शास्त्र का अधिकार है मतलब शास्त्र में जो जो आपको कर्म कांड कहा है वैसा कर्म कांड करने से आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, गारंटेड है। कांक्षत कर्म नाम सिद्धि विजयंत ये देवता, आपको जिस देवता के पास जाओ वहां पर सब डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। आपको जिस डिपार्टमेंट में जो चिट्ठी जाके जाके वहां जमा दे दो, और अगर आपकी प्रेयर ठीक है, आपने पूजा उस हिसाब से की है जैसा विधि में कहा है, तो वो देवता को आपको फल देना ही है। उस देवता के पास में और कोई चारा नहीं है। वो देवता देखेगा आपने ठीक से पूजा की कि नहीं, कोई गलती किया कि नहीं, मंत्र उच्चारण में गलती है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको फल मिल जाएगा। तो ये गारंटेड है, फल मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं? अरे हमने पूजा की, फल मिल गया, पूजा की, फल मिल गया, पूजा की, फल मिल गया, तो कहाँ जाएंगे? उस लाइन में खड़े हो जाते हैं सब। अब आज हम देखेंगे 13वां श्लोक है, इसको लेके बहुत विवाद होता है। 13 चैप्टर 4 श्लोक नंबर 13।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम,
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम,
गुणकर्म विभागशः
गुणकर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम्
अब भगवान साफ साफ कहते हैं कि चातुर्वर्ण, चातुर मीन्स चार, वर्ण मीन्स जाति, आप समझ लो, वर्ण मीन्स कलर भी होता है, बोले चार जाति जो है मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं। गुण कर्म विभाग से भगवान ने कैसे बनाया आपने, इसके पीछे विज्ञान क्या है? आपने जिसको मर्जी चाहा, इसको ब्राह्मण बना दिया, उसको शूद्र बना दिया, ऐसा किया क्या? नहीं, उसके पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है। किसके बेसिस पर हमने बनाया, किसके आधार पर हमने बनाया? गुण कर्म विभाग से हमने गुण देखे, प्रॉपर्टी देखी, कैरेक्टरिस्टिक देखी, क्वालिफिकेशन देखी, गुण देखे और कर्म देखा उसका, ये दोनों चीज देख के हमने उसको भाग कर दिया। अच्छा, तस्य कर्तारमपि माम, बनाने वाला कर्ता कौन है? बोला मैं हूं। बहुत अच्छा, विद्धि अकर्तारम अभ्य, मगर यू नो मैं अकर्ता हूं, मैंने नहीं बनाया। देखो एक ही लाइन के अंदर भगवान बोलते हैं मैंने किया, साथ साथ बोलता नहीं मैंने नहीं किया। चातुर्वर्ण किसने बनाया? मैंने बनाया। फोर्थ पाद में बोलते नहीं मैंने नहीं बनाया। दूसरे श्लोक में बोलते तो खैर हम भूल जाते, तब तक इसको डिस्कस करते करते जब दूसरे श्लोक में जाते तो भूल भी जाते। इसी श्लोक में बोलते हैं तस्य कर्तारम अपि माम, चातुर्वर्ण को मैंने बनाया, बहुत साफ साफ लिखा है चातुर्वर्ण मैं श्रेष्ठ, मैंने बनाया। फिर तीसरे पाद में कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम, मैं ही हूं बनाने वाला। चौथे पाद में बोलते विद्धि यू नो, ऐसा जानो क्या? अकर्तारम अभ्यम, मैं अकर्ता हूं। अरे आप कर्ता बोले अभी तो, अब बोलते अकर्ता, अकर्ता मत नॉन डूअर। और कैसे? अव्ययम, इम्पेरिसिबल, मैंने नहीं बनाया। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, हम देखेंगे कैसे ठीक है अगर खत्म कर पाए तो। चातुर्वर्णन, अच्छा हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? क्लासिफिकेशन का हिंदी वर्ड क्या है? वर्गीकरण है? वर्गीकरण, भगवान ने तो वर्गीकरण किया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? तो सबसे पहले जो है आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको कहते हैं निरीक्षण। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जर्वेंस? निरीक्षण, निरीक्षण मतलब आप पहले देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद में डेटा कलेक्शन, फिर आप कलेक्शन शुरू करते हो। अच्छा ठीक है, कोई भी रिसर्च के लिए फिर डेटा कलेक्शन होगा, सब कर लिया, डेटा कलेक्शन हो गया, फिर वो डेटा का एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करके फिर उसको क्लासिफिकेशन कर देते हो, देन यू डिसाइड। तो ये है, तो भगवान ने भी वैसे ही सब कुछ देखा, हमारे गुरुदेव ने भी ऐसे किया। गुरुदेव ने देखा कि यहां पर चार किस्म के चीजें हैं, मेनली फोर, एक मिनरल किंगडम है, दूसरा क्या है? प्लांट किंगडम है, तीसरा क्या है? चौथा ह्यूमन। देखो उन्होंने वर्गीकरण किया है, मिनरल के अंदर भी बहुत कुछ है, प्लांट के अंदर भी बहुत कुछ होगा, फ्लावर है, फ्रूट्स है, एक ऐसे ही डेकोरेटिव प्लांट भी होते हैं, फ्लावर के अंदर भी विथ फ्रेग्रेंस है, विदाउट फ्रेग्रेंस है, फ्रूट्स के अंदर भी डिफरेंट सीजन है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट क्लाइमेट है। अब आप बोलोगे कि आम हमको शिकागो में प्लांट करना है, होगा? और या आप इंडिया में बोलो जाके केरला के अंदर हमको जो है एप्पल चाहिए, होगा? नहीं होगा। कंट्री अलग है, उसकी क्लाइमेट अलग है, सॉयल अलग है, सब अलग अलग है। एनिमल के अंदर भी वैसा ही है, कुछ डोमेस्टिक हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं। डोमेस्टिक के अंदर वेजिटेरियन है, काऊ है, और आप घर में कुत्ता रखते हो तो डिफरेंट किस्म के बहुत से क्लासिफिकेशंस हैं। उसी तरह से मनुष्य के भी बहुत क्लासिफिकेशंस हैं। हम कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं तो बोलते हैं शिक्षा के बल पर कर सकते हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, मास्टर डिग्री होल्डर पीएचडी डिग्री होल्डर, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। दूसरा जो है स्वभाव के हिसाब से कर सकते हैं, ये सात्विक आदमी है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, ये लेजी है, है? उम्र के हिसाब से कर सकते हैं, हम इनकम के हिसाब से कर सकते हैं। हमारे इंडिया में होता है ना HIG MIG LIG, पता क्या है, हाई इनकम ग्रुप। वो जो फ्लैट वेट बनाते हैं ना, हाई इनकम ग्रुप के लिए ये है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये है, लो इनकम ग्रुप के लिए है। देखो हमने इनकम के हिसाब से भी उसको बदल दिया, कर्म के हिसाब से बोल देते हैं। आपको मालूम है बहुत लोगों का सोना वाला, चांदी वाला, दारू वाला, ऐसा टाइटल सुना है, चूड़ी वाला, देखो ऐसे भी है, ऐसा है। फिर भाषा के हिसाब से भी हम डिवीजन कर देते हैं, ये हिंदी भाषी है, ये तमिल है, ये मलयालम है, तो भाषा के हिसाब से हम कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। देश के हिसाब से कर देते हैं, इंडियन है, अमेरिकन है, ये चाइनीज है, ऐसा कर देते हैं। कलर के हिसाब से कर देते हैं, वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, येलो है, कितने किस्म से डिवीजन हम कर सकते हैं, बहुत किस्म से डिवीजन हो सकते हैं। और तो और छोड़ो, ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी सब डिफरेंट है, ब्लड के हिसाब से भी सब डिफरेंट है। एक ही देश के अंदर, एक ही फैमिली के अंदर ब्लड ग्रुप भी अलग अलग हो जाता है। अच्छा, सबसे मजे की बात है ना, आप किसी मैरिज पार्टी में जाओ, यहां पर तो नहीं होता है, इंडिया में ये सब होता है, यहां पर तो आपको निश्चित स्थान पर बैठा देते हैं, आप इधर उधर हिल नहीं सकते, दूसरी सीट पर नहीं बैठ सकते। मगर आप इंडिया के किसी वेडिंग रिसेप्शन में अगर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी, मतलब खुली जगह में लोग करेंगे, रिसेप्शन करेंगे, फिर कितने किस्म के स्टॉल लगाएंगे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इंडियन, चाइनीज एंड ऑल दैट बनाएंगे, हैं? और उसके बाद बहुत बैठने की जगह होगा, जगह होगी, तो वहां आप देखेंगे बुढ़े लोग सब एक तरह बैठे हैं। देखो वर्गीकरण हो गया, वहां क्लासिफिकेशन हो गया, हैं? अच्छा, मैरिड लेडीज सब एक तरफ बैठी हुई हैं। अच्छा, नित्या ग्रुप वाला वो अलग ग्रुप होता है, अनमैरिड ग्रुप इज सेपरेट, यूथ अलग बैठे होते हैं, सबका देखो नजर आता वहां क्लासिक नजर, आपके यहां पर नजर नहीं आता, आप टेबल पर बैठा देते हो वो सब मिक्स होता है यहां पर। वहां एकदम क्लियरली वर्गीकरण, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन नजर आता है सर। तो मनुष्य लोग के अंदर जो है कर्म प्रधान है, लोग कर्म पर ही ज्यादा जोर देते हैं, भगवान ने कर्म का ही अधिकार हमें दिए हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्ञान, ज्ञान का अधिकार है, मगर ज्ञान के अधिकारी के लिए क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न आप चाहिए पहले आदमी है, उसके बाद में फिर आपको गुरु के पास जाना होगा, गुरु पर सदन करना होगा, गुरु के पास जाने के बाद फिर उसकी सेवा करनी होगी, गुरु सेवा के बाद गुरु खुश होगा तब ज्ञान देगा, इतना झंझट कौन करे, इससे अच्छा कर्म करो, कर्म कांड करो, देवता खुश होगा, हमको मिल जाएगा। तो लोग ज्ञान मार्ग की तरफ कम जाते हैं, बोलते चलो हम लोग यहीं पर खुश हैं, लोग कर्म के अंदर ही संतुष्ट हैं। अच्छा, किसी भी एक प्रोजेक्ट करने के लिए देखो डिफरेंट टाइप के लोग दरकार होते हैं ना, एक कोई प्रोजेक्ट ले लो, कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो पहले जो है आपको एक उसका प्लानिंग बनाना होगा ना, तो उसको हम लोग कहते हैं थिंक टैंक, वो लोग सोचेंगे क्या करना है, कहाँ प्लांट बनाना है, क्या प्लांट बनाना है, किस देश में बनाना है, किस सिटी में बनाना है, कहाँ रॉ मटेरियल नज़दीक है। तो सब पहले थिंक टैंक करेगा, तो थिंक टैंक बना दिया है, प्लानिंग डिसाइडेड, एक हमको स्टील प्लांट लगाना है, इंडिया में लगाएंगे, वहाँ कोयला भी है, लोहा भी है, सब ठीक ठाक हो गया। अब उसको एग्जीक्यूट करना है, इस प्लान के हिसाब से इतनी ज़मीन लो, इस कैपेसिटी के सब ठीक ठाक करो, सब तो एग्जीक्यूटर चाहिए। पहले हुआ प्लानर्स, उसके बाद हुआ एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर के पहले तो पैसा चाहिए, फाइनेंसर, बैंक चाहिए या कैपिटलिस्ट चाहिए, पैसा भी चाहिए। और उसके बाद में सब ये तीन हो गए, तीन हो गए मतलब प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूटर मैनेजर आपने सब ठीक ठाक कर लिए, पैसा भी इकट्ठा कर लिया। अब एक्चुअल वहाँ पर ज़मीन खोदना है, नींव डालनी है, तो उसके लिए भी आदमी चाहिए, एक्चुअल वर्कर चाहिए। तो इसीलिए जो हम लोग कहते हैं थिंकर, एग्जीक्यूटर, बैंक, वर्कर, सेम चीज यहाँ पर हमारे पास में भगवान बताने जाएंगे। वही ब्राह्मण है जो थिंक टैंक है, वो है ब्राह्मण, भगवान ने कहा, जिससे हम लोग को एलर्जी हो जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शब्दों से हम लोग को एलर्जी होती है। एक मकान भी आपको बनाना होता है तो आपको पहले जो है एक आर्किटेक्ट चाहिए, जो ज़मीन देख के आपको बताएगा आपका इतना साइज का मकान बनेगा, इतने स्क्वायर फुट बनेगा, आप बताइए कितना बड़ा बेडरूम चाहिए, आप कागज़ पर बना के दिखा देगा ये आपका मकान है, आप बोलते वाह बहुत बढ़िया है। उसके बाद एग्जीक्यूटर के लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, उसके बाद फाइनेंसर चाहिए, आप फिर बैंक के पास जाते हो, फिर उसके बाद में जो एक्चुअल वर्कर है वो आता है करता है काम। तो चार किस्म के लोग हमको चाहिए होते हैं। चाणक्य कहते हैं यो यस्मिन कर्मणि कुशलः सः तस्मिन् एव नियोक्तव्यम्, जो जिस चीज में कुशल है उसको उस काम में दो। अगर जो थिंकर है उसको अगर आप बोलो भाई आप 10 केजी सामान उठा के यहां से वहां ले जाओ, यू कांट डू दैट, नहीं होगा उससे। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस जगत में कोई अकुशल पुरुष नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसके अंदर कोई हुनर ना हो। अयोग्य पुरुषम नास्ति, अयोग्य पुरुष कोई नहीं है, हर पुरुष के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ तत्व तो है, कुछ न कुछ करने लायक है वो। तो जो जो चीज करने सकता है तो उसको करने दो। हमारे मिशन में भी वैसे ही होता है, प्लानिंग होती है सबसे पहले, उसके बाद एग्जीक्यूशन का कौन करेगा, हम लोग कोऑर्डिनेटर खोजते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर कौन करेगा, समर कैंप कोऑर्डिनेटर कौन है। पहले प्लानिंग अशोक जी ने की, 4 हफ्ते का इस बार करना है समर कैंप, कॉम्प्रोमाइज टू थ्री वीक कैंप, 4 वीक से 3 वीक पर आए, कोऑर्डिनेटर चाहिए, उसके बाद में सारा अरेंजमेंट करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वर्कर चाहिए, सेवक चाहिए, फिर और कौन लोग हमको हेल्प करेंगे, सब करना पड़ता है। तो मिशन में भी वो एक ही चीज है, हमारे शरीर में भी, हमारे शरीर में भी ये थिंक टैंक है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफिस। एग्जीक्यूटर कौन है, वो इज द फाइनेंसर, स्टमक, सारा आपको जितनी भी शक्ति है वो यहां से आती है, ऑल न्यूट्रिशन कम फ्रॉम दिस इज वैश्य। और सेवा कौन करता है, आपकी दो टांगे जो हैं वो सेवक हैं, शूद्र हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, आपके शरीर में भी है, एक कंपनी में भी है, वैसे ही आपको एक स्टेट में भी मिलेगा, ये चारों चीज लगती है। भगवान ने भी किया है, भगवान ने कहा हमारी सृष्टि में ये चारों चीजें चाहिए, भगवान ने ऐसा बनाया। ठीक है, अगर केवल एक किस्म के लोग हो तो काम होगा, केवल थिंकर हो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, केवल एग्जीक्यूटर है, कोई प्लानिंग करने वाला नहीं है। केवल बैंक ही बैंक है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। केवल जो है केवल वर्कर ही है, बाकी और कोई नहीं है। कुछ नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अच्छा, तो कर्म क्यों एवं कैसे करें? देखो, सब कुछ कर्म के ऊपर आ रहा है। अब कर्म क्यों और कैसे करें, तो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, स्वे स्वे कर्म ने अभिरता संस्थिति लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा बिंदते तथा श्रुणु। देखो, आपको अपने अपने कर्म करने हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय का करना है, शूद्र को शूद्र का करना है। शूद्र मतलब वर्कर। अब शूद्र अगर बोले हमको ब्राह्मण का काम चाहिए, ये बड़े साहब तो आते हैं टाई पहन के एयर कंडीशन केबिन में घुस जाते हैं, खाली हम लोग को बोलते हैं चाय दो, टिफिन दो, ये दो, वो दो, शाम को घर चले जाते हैं बढ़िया गाड़ी में, और हम पसीना निकाल के खट के हम बनाते हैं। तो उनको जो तनख्वाह मिलती है, मेरे को दो, हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं। भगवान कहते नहीं, स्वे स्वे कर्म नहीं अभिरता संसिद्धि लभते न रहा। शूद्र जो है ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता है, ब्राह्मण शूद्र का काम नहीं कर सकता है। तो हमको अपने अपने काम करना है, ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम, शूद्र को शूद्र का, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करना है। इससे संसिद्धि लभते न रह, इससे आपको सिद्धि मिलेगी। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा बिंती तथा सुनो, कैसे मिलेगी? भगवान कहते हैं यत प्रवृत्ति भूतानां, जिसके कारण आप प्रवृत्ति कर सकते हो, जिसके कारण आप हाथ हिला सकते हो। ये न सर्वमिदम ततम, जो सारी जगह छाया हुआ है। सब जगह छाया हुआ कौन है? आत्मा है। इस आत्मा के कारण ही हाथ चल रहा है। और वो आत्मा कैसा है? सब जगह व्याप्त है। स्वकर्मणां तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी पूजा करो। किसकी? उस आत्मा की, उस भगवान की, जिसके कारण आपके पास में वो काम करने की शक्ति है, क्षमता है। और वो भगवान सब जगह है, तो अपने कर्म से उसकी पूजा करो। हम कर्म से किसकी पूजा करते हैं?
अनात्मा की।
बस इतना फर्क है। हमारी गलती कहाँ हो रही है, आप समझ रहे हैं? इतनी सी गलती है। स्वकर्मणात्म व्यर्थ सिद्धिम बिंदती मानव, ऐसा करने से आपको सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि मिल जाएगी मतलब आपका माइंड प्योरीफाई हो जाएगा, आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपकी मुक्ति होगी। बस अगर हम ऐसा ना करें तो पड़े रहो, चलता रहेगा। अच्छा, तो सारे कर्म अगर हम भगवान के लिए करें तो हमारा माइंड प्योरीफाई होता है। ये कई बार हमने बताया आपको, अगर सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए अगर होंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो हम ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे, ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे, ज्ञान मिलने से मुक्ति गारंटेड है। तो कर्म के पीछे जो एटीट्यूड होता है ना, देखो कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है, कर्म के पीछे जो एटीट्यूड होता है वो निर्भर, वो निर्धारित करता है कि आपका कर्म अच्छा है कि बुरा है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, अर्जुन का अपना मानना है कि इन लोगों को मारूंगा तो ये काम जो है ये खराब काम है, अर्जुन की सोच है ये। भगवान क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं कि अर्जुन तुम इनको मारोगे तो ये पुण्य काम है। क्यों, क्यों पुण्य काम है? भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं और अर्जुन क्यों सोचता है ऐसा? अर्जुन सोचता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो ये पाप काम है, पाप कर्म है। भगवान कहते हैं नहीं, ये पुण्य कर्म है, इन लोगों को मारो, ये पुण्य कर्म है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एटीट्यूड क्या है? भगवान का एटीट्यूड है कि हमको धर्म की संस्थापना करनी है। धर्म की संस्थापना करनी है, इसलिए वो काम पुण्य काम है, पुण्य काम है। देखो आपका जो है सर्जन जो है, अभी रवि बाबू की जब अभी सर्जरी हुई है, तो रवि बाबू की सहमति लेके उनके ऊपर अस्त्र प्रचार किया, अस्त्र प्रचार समझते हो, उनके शरीर को काटा, काटा ना, उनकी अनुमति लेके काटा। और एक अगर मान लो अभी रवि बाबू बाहर जाए और कोई आदमी छुरी दिखा के उनके पेट में दो पैसा दो ले ले, तो देखो दोनों ने शरीर काटा है, दोनों ने काटा, मगर एक का इंटेंशन था रही बाब को स्वस्थ करना और दूसरे का इंटेंशन था रही बार को दुख पहुंचाना। काम एक ही था, दोनों ने एक ही काम किया, काट दिया, मगर एटीट्यूड बिहाइंड एक्शन डिटरमिन्स वेदर इट इज ए राइट एक्शन और ए रॉन्ग एक्शन। कर्म खराब अच्छा नहीं होता है, कर्म ठीक है, कर्म के पीछे जो एटीट्यूड है वो निर्धारित करता है कि ये काम अच्छा है कि खराब है। अब मान लीजिए आप यहां से जा रहे हो डाउनटाउन, रविवार बराबर डाउनटाउन जाते हैं, अभी नहीं जा रहे हैं, अब आप रविवार को बोलोगे अच्छा आप डाउनटाउन जा रहे हो तो आते टाइम में उस दुकान से मेरे लिए सामान लेते आना है। अब रविवार के पास में दो तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अच्छा मैं जाऊंगा अपना काम भी करूंगा शाम को आपका काम भी करके आऊंगा, तो साकाम निष्काम दोनों है। डिड यू गेट इट? दूसरा वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं जाऊंगा मगर आपका काम नहीं करूंगा, इवन इफ यू रिक्वेस्ट आई विल नॉट डू इट। तो उनका काम क्या हो गया? साकाम हो गया एकदम। तीसरा वो कहते अच्छा आप ये काम करने को करो, मैं जाता हूं उसको जाके आपका काम बिगाड़ के आता हूं। देखो ये असाधु का काम हो गया है, ये असाधु का काम हो गया। अच्छा तो हमारा जो है भगवान कहते हैं हमने कैसे बनाया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कहते हैं गुण के हिसाब से बनाया। गुण क्या क्या है? सत्व रजस और तमस गुण, सत्व रजस एंड तमस गुण, ये तीन गुण जो है बराबर साथ रहते हैं, मगर इनकी ये परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है। बाई एफर्ट हम बढ़ा सकते हैं एक को बढ़ाने का मतलब क्या है, दूसरे दो को गिरा देना। अगर हमको सत्व बढ़ाना है तो रजस और तमस को, रजस को बढ़ाना है तो सत्व और तमस को, अगर तमस को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, सत्व और रजस को। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? भगवान कहते हैं कि मैंने जो है डिवीजन गुण के हिसाब से किया, जो सत्व प्रधान है। गुरुदेव बोलते हैं कि एक समझ लो किसी में 70% सत्व गुण है, आप 70 का या वैसा नहीं हिसाब लगा लेना, मेरे में 69 है इसलिए हम सत्व नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर किसी में 70% जो है सत्व है, 20% रजस है और 10% तमस है, तो भगवान कहते हैं मैं इसको ब्राह्मण कहूंगा। ठीक है, सत्व रजस तमस 70% सत्व 20% रजस और 10% तमस, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। और अगर किसी में रजस 70% है, देखो रजस प्रधान हो गया, पहले वाले में सत्व प्रधान था, रजस प्रधान हो गया, सत्व सेकंड में आ गया, सत्व मतलब 20% हो गया, तमस 10% है, तो उसको हम कहेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय हो गया, याद रहेगा। रजस फॉलोड बाय सत्व एंड तमस, रजस फॉलोड बाय तमस एंड सत्य बिकम वैश्य. क्या कहा हमने? पहला था सत्व रजस तमस, सीधा 70-20-10. सेकंड हुआ क्षत्रिय, उसमें क्या हुआ, रजस पहले आ गया, सत्व बाद में है और तमस लास्ट है. 70-20-10 वी कीप द सेम प्रोपोर्शन, 70-20-10. थर्ड कैटेगरी में क्या हुआ, रजस है बट तमस हैज कम सेकंड पोजीशन एंड सत्व हैज गॉन. तो तमस 20% हो गया और सत्व हो गया. इसको क्या कहते हैं, वैश्य. वैश्य मतलब बिजनेसमैन. देखो बिजनेसमैन सच कम बोलता है, सत्व उसका कमती है. डिड यू गेट इट? और शूद्र कौन है? तो तमस रजस एंड सत्व. पहला बात आ सत्व रजस तमस, इसका ठीक उल्टा, तमस रजस सत्व, वो क्या हुआ, शूद्र हो गया. अगेन 70-20-10. भगवान कहते हैं इस हिसाब से मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किए. अच्छा फिर इनके काम क्या है? आपने कर्म विभाग भी कहा, गुण तो आपने समझा दिया. डिड यू गेट इट? कर्म बोलता है, कर्म भी हमने बताया है, चैप्टर 18 में आएगा. अभी तो आप चौथे अध्याय में हो, तो ठीक है थोड़ा सा तो बता दीजिए आप, तो थोड़ा सा बता देते हैं. समो दमस तपस शौचम शांति मार्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम च आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. ब्रह्म कर्म ब्राह्मण का कर्म. ब्राह्मण का कर्म क्या है? समो कंट्रोल ऑफ माइंड, दम कंट्रोल ऑफ सेंसेस, तप ऑस्टेरिटी, शौचम प्योरिटी और शांति, शांति फॉरगिवनेस, आर्जवम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ज्ञानम नॉलेज, विज्ञानम विस्डम. ज्ञान विज्ञान में फर्क क्या है? वैल्यू को जब आपने जीवन में उतार लिया तो वो विस्डम बन जाता है. अगर उसको आपने केवल इंटेलेक्ट में रखा तो वो उतना काम नहीं देगा. अगर उसको जीवन में उतार लिया तब वो विज्ञान बन जाता है. ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब फेथ. सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए. तो ब्राह्मण के पास में श्रद्धा है, ज्ञान है, विज्ञान है, सम है, दम है, तप है, शांतिम है, आर्जमेव. ये हो गया ब्राह्मण के गुण. अगर सत्व गुण प्रधान आप बन जाएंगे तो ये गुण आप में आ जाएंगे. क्षत्रिय का क्या धर्म है, क्या करेंगे? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावम. ये क्षत्रिय के क्या है भाई? शौर्यम प्रोवेस, उसके बाद में तेज स्प्लेंडर, धृति फोर्टिट्यूड, दक्षम डेक्सटेरिटी, युद्धे चापि पलायनम युद्ध से भागना नहीं, अपलायनम, दानम दान भी देता है, ईश्वर भाव लॉर्डलीनेस. देखो क्षत्रिय जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ना, ऑल क्षत्रिय. लॉर्डलीनेस रूलरशिप क्षत्रिय स्वभाव. कृषि गौर अच्छा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम. कृषि एग्रीकल्चर जाके करना, गौर अच्छा कैटल रियरिंग, उसके बाद में वाणिज्य बिजनेस, ये किसका काम है? वैश्य कर्म. और परिचरात्मक कर्म शूद्र से आप ही स्वभावजन, सेवा करना सर्विस, ये किसका काम है? शूद्र का काम है. देखो ब्राह्मण ने, भगवान ने आपको गुण के हिसाब से कर्म के हिसाब से बता दिया, गुण और कर्म के हिसाब से बता दिया. अब आपको किसी व्यक्ति के बारे में उसका जाति ठीक करनी है कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, कैसे करोगे? कर्म से पता लगेगा उसके, उसके कर्म से आपको पता करना होगा है कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है. तो हमने देखा है ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ होने वाला ब्राह्मण, कई बार उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं रहते हैं. देखो हमारे इंडिया में तो सरनेम से पता लगता था ये ब्राह्मण है, हैं? ये ब्राह्मण कुल का है, उसके सरनेम से पता लगता है. मगर उसके गुण नहीं नजर आते ब्राह्मण के। तो कई बार ऐसा होता है कि जब अगर ब्राह्मण कुल में आया है तो इसका मतलब उसके पिछले जन्म के अंदर कुछ ऐसे संस्कार थे जिसके कारण वो उसको कुल मिला, मगर वो गुण इस जन्म में नजर नहीं आते हैं। तो लोग कहते हैं क्या रे, क्या है ब्राह्मण कुल का है मगर तो लगता नहीं है, इसमें तो ब्राह्मण के कोई गुण ही नहीं है, कैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, ऐसा पूछते हैं लोग। उल्टा भी हो जाता है, प्रहलाद जैसा भक्त कहां जन्म लिया, हिरण्यकशिपु हुए। कौन था वो? असुर था। देखो असुर के घर में ब्राह्मण आ गया, भक्त आ गया। या तुकाराम नीची जाति के थे मगर जन्म कर्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण। अच्छा, तो हमको अगर किसी का वर्ण निर्णय करना है कि ये किस जाति का है तो हम कैसे करेंगे? कर्म से निश्चित करेंगे। अच्छा, हमको अगर अपना बदली करना है, हमको मालूम है हम शूद्र जाति में पैदा हुए हैं, हमको अपना वर्ण बदली करना है, हमको ब्राह्मण बनना है, हम बन सकते हैं? हाँ, हम बन सकते हैं। कैसे? कर्म से कर सकते हैं। जैसे विश्वामित्र राजा ऋषि थे, अपने कर्म से ब्रह्म ऋषि बन गए। कर्म से बन जाता है आदमी। भगवान आगे जाके कहेंगे कि मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनाया, कैसे हुआ? बोला आपके कर्म के कारण हुआ है, आपके कर्म के कारण हुआ है। और महात्मा लोग इसको समझाते हैं कैसे, देखो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। बोले यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, हैं? सब स्टूडेंट सुन रहे हैं, उसने तो ऐसा नहीं किया कि भाई इन बच्चे के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हैं। सेम लेक्चर, एवरीबॉडी इज लिसनिंग। जब परीक्षा होती है, कोई फर्स्ट क्लास होता है, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड, कोई फेल भी करता है, तो इसमें दोष क्या प्रोफेसर का है कि यूनिवर्सिटी का है, किसका दोष है? उसका कर्म, तो उसने पढ़ाई नहीं की, उसका कर्म खराब था, इस वजह से वो फेल हुआ। किसी ने पढ़ाई की, उसका कर्म अच्छा था, उसको फर्स्ट क्लास मिला, तो उसमें भगवान का दोष है क्या? आपको भगवान ने बना के भेज दिया, आप क्या कर्म करोगे तो आपके ऊपर है। तो डिवीजन किसने किया? आपने किया। आप अगर नीचे कर्म के मालिक हो और आप कर्म अपना अच्छा करके ऊपर अगर आ जाते हो तो आपका क्रेडिट है। तो कर्म से हम अपना जो है वर्ण को बदली कर सकते हैं। जगत ने अल्टीमेट कॉज जगत का भगवान है, मगर वर्गीकरण हमने किया है। देखो आप इस एग्जाम्पल को याद रखना, यूनिवर्सिटी का, आपको पता रहेगा कि किसने किया है, ये डिवीजन किसने किया है, भगवान ने नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, हम अपने आप को कैसे कर्म करें जिससे मेरा कल्याण भी हो, देश का भी कल्याण हो। यहां महात्मा लोग कहते हैं कि आप अपने आप को सरेंडर करें। कैसे सरेंडर करें? देखो सरेंडर करना है, अगर आपको एक अच्छी कॉपी बनानी है तो दूध, चीनी और कॉपी तीनों को सरेंडर करना होगा ना अपने आप को। अगर चीनी अकड़ी रह के नहीं, हमने घुलेंगे नहीं इसमें, या कॉपी बोले नहीं, दूध बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो अच्छी कॉपी बनेगी? नहीं बनेगी। तीनों को सरेंडर किया तब अच्छी कॉपी बनेगी। इसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर चारों अगर सरेंडर करें अपने अपने काम को, सरेंडर करें अपने अपने काम को मतलब भगवान की प्रीति के लिए, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कर्म करें तो क्या होगा? अपना भी कल्याण होगा और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। देखो दोनों काम होगा, एक साथ होगा। अभी हमने आपको 18वें अध्याय का श्लोक पढ़ के बताया कि कैसे कर्म करना है, अपने कर्मों से उनकी पूजा करो, भगवान की पूजा करो। तो वैसा अगर हम करेंगे तो चारों जाति के लोग अपने अपना कर्म करते हुए अपने अपने मन को शुद्ध करते हुए सब ऊपर उठ के आ जाएंगे और राष्ट्र का भी निर्माण होगा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है क्या वर्गीकरण जन्मना है या कर्मना है? ये वर्गीकरण क्या जन्म से हुआ या कर्म से हुआ? नहीं, दोनों से हुआ। अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण है, हम मानते हैं। और आपने सूत्र में जन्म लेके अगर कर्म ब्राह्मण का किया तब भी आप ब्राह्मण बनेंगे, समझे आप? तो आप जन्म से भी आप वर्गीकरण को देख सकते हो, जन्म से ब्राह्मण भी हो सकता है, कर्म से भी ब्राह्मण बन सकता है। अब कौन सा कर्म देखें? जो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है वो तो पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था कह के तो ब्राह्मण कुल में आया, और शूद्र में जन्म लेके जो अभी कर्म अच्छा कर रहा है वो तो इस जन्म में कर रहा है। तो हम कौन से जन्म का कर्म देखें? यहां पर आपको ये उत्तर मिलेगा कि आपको इस जन्म के कर्म देखने हैं। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसके भी कर्म अच्छे थे उस जीवन में, आगे के जीवन में, तभी तो उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। मगर अगर हमको अभी निर्णय करना है तो हमको उसके कर्म अभी देखने होंगे, अभी क्या काम कर रहा है वो। ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण मांस बिक्री करता है तो क्या हो गया, वो वैश्य हो गया, वैश्य हो गया वो। तो प्रेजेंट कर्म आपको देखने हैं। देखो, तीन किस्म की जाति होती है, तीन किस्म की जाति है। एक होती है मुख्य जाति। मुख्य जाति मतलब जन्म भी ब्राह्मण का, कर्म भी ब्राह्मण का, उसको हम मुख्य जाति कहेंगे। क्षत्रिय परिवार में जन्म, क्षत्रिय कर्म। वैश्य परिवार में जन्म, वैश्य कर्म। शूद्र परिवार में कर्म जन्म और शूद्र कर्म, इसको हम कहेंगे मुख्य जाति है ये। मुख्य जाति। दूसरी जाति है गौणी जाति। गौणी जाति मतलब लोअर जाति में आपका जन्म हुआ मगर कर्म आपके ऊपर हो गए, तो आपकी जाति गौण हो गई। आप शूद्र में जन्म लिए हैं मगर काम आपके ब्राह्मण के हैं, अब हम आपको शूद्र नहीं कहेंगे, अब आपका वो शूद्र गौण हो गया, ढक गया। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो गौण जाति हो गई। और तीसरी है जाति जाति। जन्म ऊंची जाति का मगर कर्म नीची जाति के, कर्म नीची जाति के। ऐसा होता क्यों है? देखो, हम लोग डीप जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं विवाह के कारण होता है। एक विवाह होता है अनुलोम विवाह, जिसमें पुरुष जो है ऊंची जाति की है, महिला नीची जाति की है। और दूसरा है प्रतिलोम विवाह, जिसमें महिला ऊंची जाति की है, पुरुष नीची जाति का है। तो इससे फर्क क्या होता है? देखो, हम बहुत सिंपल वे में आपको समझाते हैं। सत्य मीन्स वाइट। सत्व इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाइट कलर। रजस इज रिप्रेजेंटेड बाई रेड कलर। तमस ब्लैक कलर। ठीक है ना? अगर ब्राह्मण जाति का पुरुष ब्राह्मण जाति की स्त्री से विवाह करता है तो व्हाइट प्लस व्हाइट मिलके रिजल्ट क्या होगा? आपको आया समझ में? आया? अच्छा,
सुन ले।
वाह, अब अगर मान लो ब्राह्मण पुरुष शूद्र मतलब काला, तमस इज इक्वल टू काला, तमस प्रधान है शूद्र, व्हाइट के साथ में काला मिल गया तो क्या कलर आएगा? गड़बड़ हो गया ना? हुआ गड़बड़?
ग्रे
हुआ तो इट्स नॉट व्हाइट। क्यों हुआ? देखो वहां पर विवाह के अंदर गड़बड़ हुआ है, समझ में आया आपको? ब्राह्मण ने शूद्र के साथ विवाह किया या शूद्र महिला ने ब्राह्मण पुरुष से विवाह किया, क्या गड़बड़ हुआ? देखा आपने, समझ में आया? नहीं, फर्स्ट इज जन्म, बस तो ब्राह्मण में जो जन्म लिया है दैट ही मस्ट हैव डन समथिंग गुड इन द पास्ट लाइफ, दैट इज व्हाई ही गॉट बर्थ इन द ब्राह्मण फैमिली, दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट्स करेक्ट। मगर अब उसका जो है कर्म है वो अच्छे नहीं, ब्राह्मण की तरह नहीं नजर आते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ मगर कर्म जो है उसके अच्छे अभी हमको नहीं नजर आते, ब्राह्मण की तरह कर्म नहीं है। ब्राह्मण के क्या कर्म है, हमने आपको बताया अभी पढ़ के गीता में जो बताया था, वैसे नहीं है। फिर हम उसको कहते हैं अरे ये कैसा आदमी है, ये ब्राह्मण ब्राह्मण कहता है मगर ब्राह्मण का जैसा कर्म नहीं है इसका। कहां से गोलमाल हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोर्स, क्यों ब्राह्मण ब्राह्मण के अंदर शादी करने से, ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण स्त्री से शादी करने से क्या होता है, गुण ठीक रह जाते हैं, उनकी प्रोजनी ठीक चलती रहती है। जब जो है ब्राह्मण और दूसरी जाति के अंदर जब मिक्सचर होता है, चाहे लड़का ऊंची जाति का हो या लड़की ऊंची जाति की हो, दूसरा जो है स्पाउस नीची जाति का है, तब ये कलर मिक्सिंग होता है। जब वो मिक्सिंग होता है तो गुण गड़बड़ करते हैं, तब गुण गड़बड़ करते हैं। ये तो था हमारे इंटर कास्ट मैरिज, हम वहां कहते हैं इंटर कास्ट, इसको लेके बहुत झमेला होता है इंडिया में, अरे तो इंटर कास्ट मैरिज किया है तो। अब सोचो यहां क्या होता है, इंटर कास्ट छोड़ के इंटर रिलीजन आ गया है। अब सोचो इंटर रिलीजन के बाद में वो जितने भी आते हैं, रिमेंबर वो सफेद लाल और काला तीन रंग है, उनके डिफरेंट मिक्सचर हो रहे हैं सब। अब वो कितनी जाति उपजाति होती जा रही है सोचो, हमने कभी सोचा ही नहीं है इन सब चीजों को, कभी नहीं सोचा। वहां की बात छोड़ो, आजकल तो देखो आपका उसके अंदर में वेजिटेबल में हाइब्रिड आया कि नहीं आया, क्या किया उन्होंने, काउज के अंदर एनिमल्स के अंदर डॉग्स के अंदर कैट्स के अंदर हाइब्रिड हुआ है कि नहीं हुआ है? वो बोलते हैं दिस इज ब्रीड, ये इसके माँ बाप कुत्ते का बाप ये था, माँ ये थी, करते हैं कि नहीं करते हैं? हुआ कि नहीं हाइब्रिड? हो ह्यूमंस के अंदर भी आ गया। अभी इसमें और थोड़ा सा बाकी है, अभी हम पूरा नहीं कर पाए, और थोड़ा सा बाकी है, आप लोग थोड़ा टाइम दे तो हम खत्म कर दें, देंगे? ठीक है। अब हम जो है देखते हैं डिफिनीशन, वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण यते अनेन इति वर्ण गुण इत्यर्थ, गुण से जो है वर्ण की व्यवस्था होती है। वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसे होता है, गुण से, वर्ण मीन्स गुण। ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्रह्म अधीते वेत्ति वा इति ब्राह्मण, जो वेद पढ़ाता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो वेद का पठन पाठन करता है, वो ब्राह्मण है। देखो इस डिफिनेशन के हिसाब से वो व्यक्ति शूद्र जाति का हो सकता है, जो वेद पढ़ाता है या ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है, छतात किल त्रायते इति क्षत्रिय, जो रक्षा करे हमारी। देखो जितने भी हमारे आर्मी के हैं, पुलिस के लोग हैं, वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो सब क्या है, क्षत्रिय हैं। अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था। वैश्य कौन है, विशति धारयति इति वैश्य, जो जगह जगह जाकर कृषि करे वाणिज्य करे वो वैश्य है। शूद्र क्या है, शूद्रा विधावती इति सेवा करे, जो सेवा करे वो शूद्र है। तो इस तरह से जन्म एवं कर्म से वर्ण का निश्चय होता है। एक सुभाषित है उसमें कहा जाता है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चते, जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। मगर उपनयन जब होता है संस्कारात द्विज उच्चते, दोबारा जन्म जो होता है जिस दिन उसको गायत्री मंत्र मिलता है उस दिन उसको कहते हैं यह ब्राह्मण हो गया। अभी तक वो संस्कारित नहीं था, भले ही वो ब्राह्मण में हो, छत्री में हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उपनयन मिलने से पहले वो शूद्र था। उपनयन मिला, थ्रेड सेरेमनी हुआ, उसके बाद में वो द्विज बन गया। कर्म ना जायते द्विज, हमारे अब हम लोगों ने निष्कर्ष क्या निकाला है, हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर हम किसी की जाति को अगर निर्णय करना है, देखना है, तो उसके कर्म देखो। उसके कर्म से हमको पता लग जाएगा कि ये किस जाति का है। अच्छा, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय मगर कर्म से ब्राह्मण। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय मगर कर्म से ब्राह्मण। वाल्मीकि बाद में ब्राह्मण बने, पहले क्या थे? रत्नाकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ही वाज ए डकैत, देखो बाद में फिर बन गए। अक्रूर वैश्य और विदुर शूद्र थे, बाद में ब्राह्मण हो गए। विदुर शूद्र थे। महात्मा लोग कहते हैं कि अभी हम कैसे विचार करें कि ब्राह्मण कौन है, तो कहते हैं कि जिसने बहलू को महत्व दिया वो ब्राह्मण है। बहलूज मतलब जो हम लोग बच्चों को बहलूज देते हैं, जिसने बहलूज को पकड़ लिया। अच्छा, वो बहलूज बोलते हैं चंडाल से भी मिले ले लो। अगर शूद्र भी अगर कोई वैल्यू दे, जैसे हम लोगों ने 24 गुरु है ना पढ़ा, जहां से मिले, तो जिसके पास वैल्यू है उसी को हम लोग कहेंगे कि वो संस्कारित है। अब मान लो शूद्र कन्या हो मगर उसके पास वैल्यूज अच्छे हैं, तो उसके उच्च कुल के अंदर विवाह हो सकता है, ब्राह्मण में विवाह हो सकता है। शूद्र की जन्म है मगर उसके पास वैल्यूज अच्छे हैं, तो महात्मा कहते हैं कि ये लड़की जो है ऊंचे कुल में भी जा सकती है, क्योंकि उसके पास में वैल्यूज हैं। अब उसके बाद में बताते हैं भगवान, तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अभ्यम। मैं चार वर्णों का करता हूं मगर करता नहीं भी हूं। देखो सेकंड लाइन हमने देखा था ना, भगवान कहते हैं मैंने ही बनाए हैं, फिर भगवान कहते मैंने नहीं बनाए। अच्छा, भगवान ने बनाए कैसे हैं? बोले देखो ये तो सारे शरीर जो बनाए वो प्रकृति ने बनाए हैं, और प्रकृति इनर्ट है, मगर प्रकृति जो है कब करती है? मई अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचर, मैं अगर प्रेजेंट होगा तब प्रकृति काम करेगी। मैं अगर होगा तब होगा, मेरे प्रेजेंस के अंदर प्रकृति काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के अंदर बल्ब हीटर सब काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो बल्ब काम करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरी प्रेजेंस में होता है, चेतन की दृष्टि से मैंने चेतन उन सबको दिया है, इसलिए मैं करता हूं। बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस एवरीथिंग इज हैपनिंग, देयरफॉर आई एम करता। फिर भगवान कहते हैं कि मैं अकर्ता हूं, आई एम नॉन डूअर। कैसे आप अकर्ता हैं? तो बोले मेरे में डूअरशिप नहीं है, इंजॉयरशिप नहीं है, इसलिए मैं अकर्ता हूं। जीव के अंदर क्या है? डूअरशिप है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। भोक्तृत्व इज सटलर देन कर्तृत्व। कैसे है? वेरी सिंपल। पहले मन के अंदर भोग की इच्छा आती है, मेरे को आइसक्रीम खानी है। नित्या बोले कि मेरे को अभी आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम, तो इच्छा आई, देन नित्या विल रन टू द आइसक्रीम पार्लर। अब देखो डूअरशिप आ गया ना, तो पहले क्या है इन द माइंड? आई वांट आइसक्रीम, तो दैट वॉज भोक्तृत्व, आई वांट दिस, देन आई एक्टेड ऑन दैट, डूअरशिप केम नेक्स्ट। Which one is subtler? Enjoyership is subtler. भगवान कहते हैं मेरे में कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, इसलिए मैं अकर्ता हूं। अव्ययम इम्पेरिसिबल, मेरे के अंदर कोई व्यय नहीं है। भगवान आगे जाके बताएंगे कैसे मैं अकर्ता हूँ, और आप भी अकर्ता बन सकते हो। आप भी अगर उसी तरीके से काम करो जैसे भगवान काम करते हैं। भगवान कैसे काम करते हैं? विदाउट डूअरशिप एंड विदाउट इंजॉयरशिप। अगर जीव भी अगर वैसे ही काम करने लग जाए विदाउट डूअरशिप एंड विदाउट इंजॉयरशिप, तो वो भी नहीं बंधेगा कर्म में। भगवान नहीं बनते हैं। भगवान अगले श्लोक में जाके बताने वाले हैं कि मैं इतना काम करता हूँ मगर मैं बंधता नहीं हूँ काम से, कर्म से बंधता नहीं हूँ। और जीव कर्म करता है और बंधता है। क्यों बंधता है? क्योंकि उसमें डूअरशिप है, उसमें इंजॉयरशिप है। मेरे में डूअरशिप नहीं है, इंजॉयरशिप नहीं है, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। समझ में आया? दोनों स्टेटमेंट भगवान के कि मैं करता हूँ, मैंने बनाए हैं, मैं अकर्ता हूँ, मैंने नहीं बनाए हैं, बोथ आर राइट। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।